शांति। आज हम मार्गदर्शन कार्यक्रम में मिलेंगे शिक्षकों से और जानेंगे उनकी समस्याओं को और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक जगत में जिनका जाना पहचाना नाम है, जो संपूर्ण उत्तर बिहार को नियंत्रित करती हैं और अपनी तपा साधना से, अपनी आध्यात्मिक चेतना से और अपने ज्ञान से निरंतर व्यापक सामाजिक सरोकार से जुड़कर समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को लाभान्वित करती रहती हैं।
आज हमें बहुत खुशी है कि आप सभी जो विद्यार्थी के जीवन के आधार हैं, जो एक विद्यार्थी को पढ़ाकर, ज्ञान देकर, एक ज्ञान की ज्योति जगाकर और उसे मार्गदर्शन देते हैं, आप सब शिक्षक यहाँ आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम ये कहेंगे कि एक समय था जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो चरित्र के निर्माण के लिए दी जाती थी और गुरुकुल में रहकर वो केवल पढ़ाते ही नहीं थे, वो काम करना भी सिखाते थे, वो बड़ों का आदर करना भी सिखाते थे, वो जंगल में लकड़ी काटने भी भेजते थे और प्रातः 3 बजे उठाकर पढ़ाया करते थे। कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी वो उन्हें उत्सुक करते थे, आगे बढ़ाते थे। उनका लक्ष्य था जीवन बनाना, चरित्र का निर्माण करना, उन्हें विशेषता संपन्न बनाना। समय बदलता गया। आज हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य धनोपार्जन है, शिक्षा का उद्देश्य ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना है और उसके अंदर पद पाने की होड़, धन पाने की होड़ ने अनेक प्रकार के गलत काम करके भी और आगे बढ़ना चाहता है। शिक्षा उसे हम कहते हैं जो जीवन में बैलेंस रखना सिखाए, जो संतुलन सिखाए। शिक्षा उसे कहते हैं जो हमारे चरित्र का निर्माण करे। शिक्षा उसे कहते हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए गुण और शक्तियों को जागृत कर दे, जगा दे और ऐसे शिक्षा प्राप्त करने वाले जिस क्षेत्र में खड़े हो जाएं, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण ये बताता है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है।
एक शिक्षक भी तो मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जिनका परिवार है, जिनका सरोकार समाज से है, दुख सुख के पूंजीभूत रूप है। हमरानी दीदी आज शिक्षकों से मिलते हुए और शिक्षकों को जानते समझते हुए, बल्कि आपने शिक्षा के लिए अपने आध्यात्मिक समाधान के साथ निरंतर एक आलोक देने का काम किया है। शिक्षा के लिए, उसकी पुष्ट बुनियाद के लिए आध्यात्मिकता की नितांत अनिवार्यता है और आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ी शिक्षा पद्धति कभी भी दिग्भ्रमित नहीं करती। हम जानना चाहेंगे फिर एक ऐसे शिक्षक से जो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए भी शैक्षिक कार्य में पूरी लग्नशीलता के साथ भिड़े हुए हैं, बावजूद इसके कभी कभार क्षोभ भी होता है, परेशानी भी होती है और चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता का लाभ हमारे देश के कर्णधार इन बच्चों को शैक्षणिक विकास के साथ ही साथ एक मनुष्य निर्माण के रूप में भी उन्हें निरंतर मिले, हम जानना चाहेंगे आपसे और आपका प्रश्न, आपका दर्द।
मैं जो विद्यालय में गया हूँ मेरे अनुकूल कार्य नहीं हो पाता है, मैं चाहता हूँ कि शिक्षक या स्टूडेंट अनुशासन में रह के पढ़े, सभी क्लास में अनुशासन हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में नहीं हो पाता है। मैं तो अपने क्लास को बिना क्रोध किए हुए प्यार से आध्यात्मिक ज्ञान दे करके मैं क्लास को शांत कर लेता हूँ, लेकिन सभी क्लास में इस तरह की बात नहीं हो पाती है।
सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करें और उन बच्चों को आप ये बताएं कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। आज हमने श्री राम की कथा सुनी है, तो राम जैसा चरित्र कहाँ है, श्री कृष्ण जैसा चरित्र कहाँ है, वो बनने की प्रेरणा मिले। आज वो चित्र दिखाने की जरूरत है, क्या क्या गुण हम धारण करें और कैसे धारण करें, इसका व्यक्तिगत लाभ क्या होगा और समाज को परिवार को लाभ क्या होगा, ये बताने की जरूरत है। अगर हम ये उनको अच्छी तरह कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं विद्यार्थी जो शिक्षा लाभ लेने के लिए वहां गया है वो जरूर ग्रहण करेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसे अच्छी तरह समझा सकें कि तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। गुण अगर हमारे जीवन में है तो हमारी अपनी संपत्ति है, केवल ज्ञान की पूजा नहीं होती, हर जगह गुणों की पूजा होती है, इसलिए हमें उसका सत्कार करना है, उसका सम्मान करना है और जीवन को अनुशासनमय बनाना है। अनुशासन का अर्थ क्या है, अणु का अर्थ है छोटा, शासन का अर्थ है राज्य। हमें ये समझाना है आत्मा राजा है, आत्मा राजा है और ये शरीर पर वो शासन कर रही है। अगर हम पूछें क्या आत्मा शरीर पर शासन कर रही है, जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, गुण नहीं देखते, हरे के अवगुण देखते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, आज अश्लील बातें, अश्लील गाने, एक दूसरे की निंदा सुनने में रस आता है, आनंद आता है, ऐसी व्यर्थ बातें बोलने में आनंद आता है, ये कर्म इंद्रियों पर आत्मा का शासन नहीं है जो उसे सही रास्ते की ओर ले चले। सही रास्ता क्या है ये भी पहचान नहीं है। हम अनुशासन उसी को समझते हैं, अणु आत्मा इन कर्म इंद्रियों पर शासन करे, अर्थात इसे सही रास्ते की ओर ले चले, वही अनुशासन है। आ इसकी जानकारी दें, ऐसी ऐसी कहानियां उनको सुनाएं, ऐसी ऐसी बात उनको सुनाएं। ऐसा हम नहीं समझते कि विद्यार्थी उसे ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा हम नहीं समझते। हमने देखा है हमारे पास आने वाले विद्यार्थी जीवन में बहुत शांत, बहुत शीतल, बहुत सात्विक, बहुत सत्कार करने वाले, बहुत अच्छे आचरण वाले बन जाते हैं। ऐसा बनाने की प्रेरणा देना पड़ता है। कईयों में लड़ने झगड़ने का भी स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं चोरी करके आ जाते हैं, कभी किसकी किताब ले आए, कभी किसका पेन ले आए, कभी कुछ ले आए। वहां फिर माता पिता की भूमिका है, माँ देखती है और उसको कुछ नहीं कहती है। एक कहानी है, बच्चा ऐसा चोरी करता रहा, माँ देखती रही। एक दिन उसे बड़ी चोरी कर ली और उसे फांसी की सजा हो गई। तो फांसी चढ़ाने से पहले पूछा जाता है तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, तो उसने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने माँ के कान काट लिया। उसे पूछा तुमने माँ का कान क्यों काट लिया, उसने कहा मैं इसको रोज बताता था, मैं ये चोरी करके लाया। इसने मुझे कभी भी कड़ाई से नहीं कहा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम वो नहीं लाना चाहिए। मुझे प्रोत्साहन मिला और मैं करते करते आज इतना बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया। तो माता पिता की भी भूमिका है कि वो बच्चे को चरित्रवान बनने के लिए कड़ाई करे और उसको वैसा बनाए, ये भी भूमिका है। हम समझते हैं माता पिता का जो कर्तव्य है संस्कार डालना, शिक्षक का भी कर्तव्य है संस्कार डालना और गुरु का भी कर्तव्य है संस्कार डालना। तीन ही तो मुख्य होते हैं जीवन में, पहले माता पिता, उसके बाद शिक्षक, उसके बाद गुरु। तीनों की जीवन में मुख्य भूमिका है और तीनों ही संस्कार डालने वाले हैं, न केवल डिग्री दिलाने वाले। आज वो अपने आप को मजबूर ना समझे, हम क्या करें हमारे विद्यार्थी नहीं मानते, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसा कन्विंस करें, उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि वो ऐसे गुणों को ग्रहण करें, वो ऐसे सही रास्ते की ओर चलें। ये समझाने की जरूरत है। माता पिता खुद भी सही रास्ते की ओर चलें और उन्हें सही मार्ग की ओर ले चलें। ये सहयोग बच्चे को चाहिए ताकि वो आगे चल करके अपने माता पिता को वो कार्य करके दिखाएगा जो उसने उनको करते देखा है।
रानी दीदी ने बताया कि अगर हमारा भाव शुद्ध है, उद्देश्य पवित्र है और समर्पण ईमानदार है और हम दृढ़ता के साथ अपने आचरण में संपूर्ण शैक्षणिक प्रणाली को उतारते हुए अगर हम बच्चों से संवाद करते हैं, बच्चों के बीच जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा ही अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में झीकने और खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आगे भी बात बढ़ती है, और भी परेशानियां हैं, और भी व्यथा है, और भी द्वंद्व है, और भी जिज्ञासा है, और भी प्रश्न है, और सबके समाधान के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ और अनुभव सिद्ध तपस्या में निमग्न रहने वाली, अपने नित्य नूतन ज्ञान को परिमार्जित करने वाली परमादरणीय रानी दीदी यहां उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे अपने बीच उपस्थित आपसे, घर का परिवेश, विद्यालय का परिवेश और फिर समाज का परिवेश, ऐसे में शिक्षा और शिक्षक दोनों कहीं न कहीं से चौराहे पर खड़े हैं, ऐसे में क्या व्यथा आपकी हो सकती है और किस तरह की जिज्ञासा और जिसका समाधान आप चाहते हैं।
स्कूलों में मॉरल एजुकेशन तो दी जाती है, कुछ शिक्षक उस पर व्यवहारिक तौर से उस पर अमल करते हुए भी वो बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद भी बच्चों में जो मॉरल एजुकेशन का व्यवहारिक तौर पर आना चाहिए वो एजुकेशन नहीं आ पाती है। या इसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार है या उनके अभिभावक भी।
माता पिता का बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे के जीवन में। असली शिक्षा तो उनके द्वारा ही मिलती है, असली संस्कार भी उनके द्वारा ही मिलते हैं। माता पिता में अगर सच्चाई है, ईमानदारी है, स्वभाव में मधुरता है, सत्कार करने की भावना है, तो बच्चों में वो संस्कार डालते हैं। औरों को सहयोग देने का भाव है तो बच्चों में भी वो संस्कार डालते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि माता पिता भी इसके जिम्मेवार हैं। अगर उनके अंदर जैसी प्रवृत्ति है वैसी प्रवृत्ति उनके बच्चों में भी बढ़ने लगती है, वो उसको ग्रहण करते हैं। वास्तव में ग्रहण करने का तरीका तो यही है, वो देखकर सीखना चाहते हैं, केवल शब्दों से नहीं, केवल किताबों में लिखा हुआ नहीं, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। अगर ये ज्ञान दिया जाए, अपनी लाइफ में उतारा जाए और उनके अंदर ये ज्ञान दिया जाए, ये संस्कार डाले जाएं, तो वो संस्कार परिवार से विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और उससे ज्यादा, माता पिता से ज्यादा बच्चे टीचर से डरते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हर एक अपनी जिम्मेवारी को समझे। किताबों में भी ऐसी किताबें अनिवार्य होनी चाहिए जिसको जिसकी शिक्षा आवश्यक है। आजकल आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। हमारी बहनें आजकल स्कूलों में भी ये शिक्षा देने जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उन्होंने जीवन में उतार कर देखा है, इसलिए बच्चे उसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और सही रास्ता पकड़ते हैं। नहीं तो समझते हैं हम तो कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, और कमाने के लिए क्या क्या गलत काम करने पड़ेंगे वही ट्रेनिंग ले लेते हैं एक दूसरे से। इसलिए आवश्यक है कि हम उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान दें, स्वरूप से ज्ञान दें और उसका महत्व बताएं।
केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान के लिए देखने की भी जरूरत है, और देखते हुए जो ज्ञान हासिल किया जाता है उसका असर ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षकों को भी संकल्पित होकर वैसा ही दिखाना चाहिए स्वयं को, जैसा वे बच्चों के समग्र विकास में नैतिकता के साथ अपेक्षा करते हैं। हम जानना चाहेंगे फिर से हम अपने बीच उपस्थित शिक्षक और उनसे शिक्षा का संदर्भ, और साथ ही साथ मनुष्य अंततः सीखता है, एक शिक्षक के लिए भी निरंतर पढ़ने की और सीखने की जरूरत है, और स्वयं को भी संस्कारित और परिमार्जित करने की जरूरत है। और जो शिक्षक इस संदर्भ में बहुत सावधान है वे तो बच्चों के लिए सीधे सीधे असरकारक होते हैं, बावजूद इसके उनका व्यक्तिगत भी दर्द है, व्यक्तिगत भी परेशानी है, व्यक्तिगत भी द्वंद्व है। तो शिक्षा वातावरण बच्चों से इतर अगर आप कुछ अपनी परेशानी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उसका समाधान आध्यात्मिकता के माध्यम से हमें रानी दीदी से मिले, तो वह भी प्रश्न आप करते हैं।
पाश्चात्य संस्कृति का खुले आम प्रदर्शन होता है, इस पर रोक नहीं लग रहा है, तो फिर हम अपनी संगति को, बच्चे की संगति को कैसे सुधार पाए, उस पर रोक लगना भी जरूरी है। हम एक रिसोर्स तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, जो स्टेट पॉलिसी हो, इंजीनियर तैयार करते हैं, मानव नहीं तैयार करते, एक बहुत बड़ा अंतर है। तो जो हमारी पॉलिसी है, नीतिगत बात है, हम उसी ओर चल, और इसकी जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वहां से गाइड होता है, हम कह करके कुछ परसेंट आदमी को तैयार कर सकते, लेकिन मेजोरिटी को हम नहीं तैयार कर सकते। इसके संदर्भ में हमें जानना चाहेंगे कि क्या, कौन सी ऐसी व्यवस्था है, क्या इसको हटाया जा सकता है?
सरकार भी ये मान्यता दे रही है कि हर स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जाए। हमारे को भी सरकार द्वारा ये मान्यता मिली है कि हर स्कूलों में जाओ और सप्ताह में एक दिन ये वैल्यूज के बारे में क्लास कराए, जिसे एक टच द लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत ये क्लासेस 8वीं क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास में हमारे बहुत से भाई बहने प्रतिदिन जाकर हर क्लास में ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसे देखा गया है बच्चों में इसके प्रति बहुत रुचि है, आत्मा की प्यास है, आत्मा को इसकी आवश्यकता है। अगर ये आध्यात्मिक संस्कार नहीं डाला गया तो आज समाज के अंदर रहने वाला सारे समाज को अपना कैसे मानेगा? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। हम जाति भेद से ऊपर उठकर, हम भाषा भेद से ऊपर उठकर, हम प्रांत भेद से ऊपर उठकर, धर्म भेद से ऊपर उठकर सबको आत्मिक नजर से देखें, ये शिक्षा ही तो है जो मन को इतना विशाल बनाए जैसे आकाश सबको अपने अंदर समाये हुए है। जैसे वायु सबके लिए चलती है, ऐसे हमारा व्यवहार, हमारी भावना सबके लिए समान हो, वो तब होगा जब हमें परमात्मा का ज्ञान हो। सृष्टि का रचयिता एक है और सारा संसार उसकी रचना है, और हमारा व्यवहार सबके साथ एक मानववत हो, एक श्रेष्ठ दृष्टि हमारी उनके प्रति अच्छी हो, कहीं भी हमारे अंदर भेदभाव ना हो, इसकी आवश्यकता है। अगर ऐसा हो तो आज समाज में इतने झगड़े हो रहे हैं, आज जाति के नाम पर झगड़े हैं, आज भाषा के नाम पर झगड़े हैं, आज धर्म के नाम पर झगड़े हैं। अगर हमारे फाउंडेशन से यही पढ़ाया जाता हो, सबका सत्कार करो, सबका आदर करो, सबको ऊंची नजर से देखो, सबसे शिक्षा ग्रहण करो। अगर हम शिक्षा ग्रहण करें, ईसा मसीह ने क्या शिक्षा दी, क्षमा करो। महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसी प्रकार से एक एक धर्म की ओर जाकर देखें तो एक एक धर्म में हमको एक एक गुण प्राप्त होता है, एक एक शक्ति प्राप्त होती है। अगर वो हम ग्रहण करें, शिक्षा वो है जो हमें ज्ञान भी दे, हमें दयावान भी बनाए, हमें सत्कार करना भी सिखाए, हमें हर एक से गुण लेना भी सिखाए, हर एक को सहयोग देना भी सिखाए। अगर एक डॉक्टर दयावान नहीं होगा तो क्या पेशेंट से प्रेम पूर्वक बात कर सकेगा? एक इंजीनियर अगर अच्छे बिहेव वाला नहीं होगा तो क्या किसी का काम कर सकेगा? केवल इंजीनियर तैयार कर देना, केवल डॉक्टर तैयार कर देना काफी नहीं, डॉक्टर भी बहुत मधुरता वाला और बड़ा दयावान, सिंपैथी वाला चाहिए। आज कोई गरीब व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और वो डॉक्टर बहुत सिंपैथी वाले हैं तो फ्री उसका इलाज कर देते हैं, फ्री उसको दवा दे देते हैं, फ्री उसका ऑपरेशन कर देते हैं। आज कई कैंप लगाए जाते हैं, फ्री भी लोग चिकित्सा करते हैं। अगर उनके अंदर ऐसी सिंपैथी ना हो, सहानुभूति ना हो, वो दया भाव नहीं हो, हर एक की परिस्थिति की जानकर उसको मदद करने की भावना ना हो, वो डॉक्टर कैसा, वो इंजीनियर कैसा, वो साइंटिस्ट कैसा? आज हर क्षेत्र में केवल उस गुण की उसकी आवश्यकता नहीं, साथ साथ गुणवान होने की भी आवश्यकता है। उनकी सिंपैथी के बोल, डॉक्टर जितनी दवा देता है उससे ज्यादा काम क्या करता है? आज होम्योपैथिक है, आज एलोपैथिक है, आज अनेक प्रकार की पैथी चल गई है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है सिंपैथी की। अगर सिंपैथी नहीं तो कोई पैथी काम नहीं करेगी, आज उसकी आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता पूरी करता है तब वो कहा जाएगा कि ये वास्तव में शिक्षा ग्रहण किया है। शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति के अंदर लोग समझते हैं ये पढ़ा लिखा है, इसको पता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कहना है, कब सहना है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति सहना नहीं चाहता, कहना चाहता है, सुनना नहीं चाहता, बोलना चाहता है। आज लिसनर की जरूरत है, आज सुनने वाले की जरूरत है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो मन की बीमारी का इलाज करते हैं, वो एक एक दो दो घंटा अपने पेशेंट की बात केवल सुनते हैं, आज उसकी आवश्यकता है। तो ये भी गुणों की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम शिक्षा लाभ कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं।
भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षकों को अपनी सद्वृत्तियों को साधते हुए निरंतर निष्कलुष होकर बच्चों के बीच अपने आचरण को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक कार्य करने की दिशा में अगर उनकी सहभागिता होती है तो निश्चित रूप से इसका मनोनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षक कहीं से भी अपने आप को कमजोर न माने, उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मज्ञान, उनका आत्मबल इसलिए भी बढ़ा होना चाहिए कि वे राष्ट्र के करणधार का निर्माण करते हैं और निर्माण करते हैं उसके चरित्र का, उसके मनुष्य का, उसके भीतर निहित मूल्य का, और उसके माध्यम से एक समग्र संस्कृति का और एक सभ्य समाज का भी वे निर्माण करते हैं। आज हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी रानी दीदी से आध्यात्मिकता के साथ जो आज का ज्वलंत प्रश्न है और जो ज्वलंत संदर्भ है उसको केंद्र में रखकर अपने बीच उपस्थित शिक्षकों के भाव को जानते हुए, उनकी जिज्ञासा, उनके औत्सुक्य को जानते और सुनते हुए, उनके दर्द को महसूसते हुए, जिस तरह से हमने रानी दीदी से उत्तर प्राप्त किया, निश्चित रूप से हमारी आत्मा में भी वह जागृति, वह स्थिति आई होगी और हम जितनी तेजी से हो सके अपने व्यक्तित्व को भी आध्यात्मिकता के सांचे में ढालते हुए बच्चों के बीच भी उसी आध्यात्मिक साधना का प्रतिफल देते हुए नैतिक मूल्यों के साथ साथ तकनीकी विकास, तकनीकी ज्ञान और इस सबसे इतर समग्र जीवन जीने के लिए एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण करने की दिशा में जिस शिक्षा के साथ हम अग्रसर होते हैं सही अर्थ में वही शिक्षा है और कोई ऐसी शिक्षा नहीं जो विवेक को जागृत न करे। और विवेक में जब आध्यात्मिकता की खुशबू होती है तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और आत्मा वही जो परमात्मा को अनुभूत करे, परमात्मा का साक्षात्कार करे। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आए हुए तमाम शिक्षकों का बहुत बहुत अभिवादन और सर्वाधिक अभिवादन परमादरणीय रानी दीदी का, जिन्होंने अपने को ही एक आदर्श शिक्षक के रूप में, एक आदर्श नेतृत्वकारिणी भूमिका के रूप में और साथ ही साथ एक तपश्चर्या जीवन जीने वाली साधिका के रूप में और अपने आभा से दीप्त करने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में भी आपकी उपस्थिति से जिस तरह का बोध, जिस तरह की दिशा और जिस तरह की दृष्टि शिक्षा और शिक्षक, वर्तमान मूल्य, नैतिक संदर्भ और संस्कृति जागरण के लिए हमें उपलब्ध हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार हूं।